कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।
दो दो या तीन तीन का ग्रुप बन जाओ और रिवाइज करेंगे इस टॉपिक पर कि हमें अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी, दो दो तीन तीन चार चार जैसा आपस में ग्रुप बनो, पॉइंट्स निकाल, रिवाइज करेंगे क्लास को भी और हर एक ज्ञानी तो आत्मा है और भी पॉइंट्स आपकी बुद्धि में होंगे कि हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या अटेंशन रखना है। पीछे वाले भी चार चार तीन तीन दो दो आपस में बैठो। जो क्लास किया वो रिवाइज करेंगे याद करके, डायरी खोल के नहीं, डायरी खोल कर रिवाइज नहीं करेंगे, याद करके रिवाइज करेंगे। हाँ बैठो, नीचे बैठने वालों को तो जगह है। कौन सी बातें बताई गई और आप खुद भी ज्ञानी तो आत्मा है तो अपनी बुद्धि से बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स निकालो। दो दो मिलके, हाँ अकेला अकेला नहीं, दो तीन चार पांच जो भी आपस में मिलके बैठना चाहे। कौन आके सुनाएगा अपने ग्रुप की बात? पांच वाक्य में बताना है बस। कौन सा ग्रुप बताएगा? सिर्फ पांच वाक्य और कोई बात नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पर। इसके बाद कौन आएंगे? पीछे से भी दो ग्रुप आएंगे और यहां से एक ग्रुप आएंगे।
पहला वाक्य है कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना और सत्य बोलना। दूसरा है स्वयं के प्रति, स्वयं उत्थान के प्रति सोचना, पर चिंतन बिल्कुल भी नहीं करना।
बहुत अच्छा।
तीसरा है जिस प्रकार देवताओं को भोग लगाया जाता है इसी प्रकार वही वस्तु अपने खाने पीने में वही चीज लेनी जो देवताओं जैसी उसको भोग लगाई जाती है।
सात्विक, हाँ
सात्विक आहार के अलावा कुछ नहीं खाना और अपने हर समय ये ध्यान रखना कि भाई मैं ईश्वरीय परिवार का हूं तो ऑटोमेटिक हमारे कर्म जो हैं वो सात्विक होते चले जाएंगे, हमारी सोच तुरंत बदल जाएगी। दूसरों की गलतियों को नहीं देखना, परचिंतन नहीं करना, केवल अपने बारे में सोच के और अपने ये सोच के कि मैं किस कुल का हूं, यदि हमारे को कुल याद रहेगा तो हमारे से कोई गलती नहीं होगी, हमारी चरित्र चलन सब कुछ एकदम से नॉर्मल हो जाएगा जैसा बाबा चाहते।
बहुत अच्छा। बहुत अच्छी, ईश्वरीय कुल के हैं तो याद रहने से कुल मर्यादाएं याद रहेगी, तो अपने आप कर्म सही हो। आइए और पीछे से कौन आएंगे, भाइयों में से बहनों में से?
हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सम्मान में स्थित होकर करें जो कुछ करें, क्योंकि जब तक हम सम्मान का स्वरूप नहीं बनेंगे तब तक हमें नशा नहीं चढ़ेगा कि हम कौन है। हम तो दुनिया से अलग है ना, सबसे न्यारे और प्यारे। हम ये भूल जाते हैं कि हमें मिला कौन है, कोई देहधारी नहीं, सबसे महान सर्वशक्तिमान परमपिता जिसे दुनिया ढूंढ रही है, उसने हमें आके ढूंढा है। हम तो ढूंढ ढूंढ के थक गए लेकिन उसने हमें आके अपना बना लिया। मेरे काफी अनुभव हैं वैसे, लेकिन बाबा कहते हैं मान में स्थित होके, जब तक स्थित नहीं होगे तब तक नशा नहीं चढ़ेगा, प्यार नहीं जागेगा। और बाबा ने कहा है कि आए कहाँ हो, कौन हो, ये नशा चढ़ाओ, मैं कौन हूं। जब तक हम स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक उसको भी नहीं जानेंगे। और खाने का तो भाई साहब ने बता ही दिया है, जैसा अन्न वैसा मन। बाबा कहते अब यहाँ जो तपोभूमि है, बाबा की कर्म भूमि है जिसपे हम अब आए हैं, जब तक तप के नहीं जाएंगे ना तब तक मजा ही नहीं है। खा लिया, पी लिया, सो लिया, सारा दिन हम घर में क्या करते हैं। दीदी का एक एक महावाक्य है, दीदी ने कहा ना सुनना नहीं बुनना है, स्वरूप में लाना है। हमारे अंदर है थोड़ी सी कमियां, लेकिन बाबा कहते हैं वो कमियां कमजोरियां हमें यहीं पे छोड़ के जानी है। चार धाम की यात्रा क्यों कर रहे हैं, दीदी ने पांच बातें कही हैं। बाबा चार धाम की यात्रा इसलिए करवा रहा है कि चारों धामों पे जाके हम एक एक चीज अपने साथ लेके जाएं। कल भाई साहब ने कहा है सोचो हम क्या लेने आए हैं और क्या लेके जाएंगे, ये हमने सोचना है। ओम शांति।
ओम शांति। तो कर्मों के श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारे ग्रुप में तो यही डिस्कशन हुआ था, जैसे अश्विनी भाई ने भी अपनी ओपिनियन दी, मैं भी, और ये उचाना से सत्यवान भाई जी, तो यही होता था, बताया, डिस्कशन हुई थी कि कर्मों का जो बेस है वो है हमारी वृत्ति, हमारी सोच। जैसी हमारी सोच होगी, हम जो उस टाइम पे काम करते हुए सोच रहेंगे तो हमारे जो कर्म का लेवल है वो उसी तरह होगा। तो अभी जैसे ये बहन बता के गई है, अगर कर्म को श्रेष्ठ बनाना है तो हमें अपनी सोच अच्छी बनानी होगी, और सोच अच्छी बनाने के लिए हमें सम्मान में स्थित रहना होगा। सम्मान में इस तरह स्थित रहना होगा बिल्कुल, मतलब उसका अपने चारों तरफ ओरा सा बना लें, बनाना पड़ेगा। जैसे कई बड़ी सेंटर पे स्लोगन सम्मान मिलते हैं, जैसे कि मैं एक सृष्टि रंगमंच पर एक एक्टर हूं, तो पूरा दिन अगर हम इसी सम्मान में रहें, हर रोज एक सम्मान ले सकते हैं, तो हमारी सोच एक एक्टर भाई मेरे से कोई भी छोटी सी भी गलती नहीं हो सकती। तो अगर इस स्थिति इस सोच के साथ सम्मान में हम पूरा दिन टिके रहें तो हमारे जो कर्म है वो अपने आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। और अश्विनी भाई जी ने बताया था सेकंड पॉइंट, यानी कि ये सम्मान में रहना तो है ही ठीक, इसके साथ साथ एक मतलब अपनी स्थिति ऐसी बनानी चाहिए कि आत्मिक स्थिति में रहें, हर एक को मतलब आत्मा समझें। और यही भाई हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं और एक्टर हैं, और हमारी जो सोच है वो एक्टर के समान होनी चाहिए। ओम शांति।
ओम शांति। देखो हम आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन भी हो जाएगा, हम यही सुन रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं उसको हम कितना प्रैक्टिकल रूप देते हैं। असली तो प्रैक्टिकल की बात है, हम जीवन में कितना उतारते हैं, और जो नहीं हम अपने पर या अपने अड़ोस पड़ोस में प्रचार प्रसार करके लोगों को भी नसीहत देते हैं नहीं देते हैं, तो इसका तभी फायदा होगा। जैसे स्थूल और सूक्ष्म दो हैं, स्थूल तो हमें दिखाई देता है, हमारा शरीर पंचभूत से बना हुआ है, सूक्ष्म हमें दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म की अनुभूति कर सकते हैं। जैसे नेचर ऑफ सोल क्या है, क्यों अंदर तो सोल है, सोल को हम टच नहीं कर सकते, वी कैन ओनली फील द सोल। तो इसी प्रकार से नेचर ऑफ सोल, जैसे बार बार हम सुन रहे हैं दीदियां बता रही हैं, तो नेचर ऑफ सोल जो है ना उसके साथ जो है ना हमारे ऑब्जेक्ट हैं पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, शक्ति, प्रेम और ज्ञान। तो इन पर विचार करो, पवित्रता शांति, पहले पवित्रता नहीं होगी मन की शरीर की तो अगला नेक्स्ट कैसे आएगा। पवित्रता शांति, सुख, आनंद, शक्ति, प्रेम और ज्ञान, ये तभी संभव है जब एक के बाद यानी इनको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है नी इनकी अनुभूति हम अपने जीवन में करें। हाँ, पहले तो हमें नहा धोकर के बाबा को याद करके नेक्स्ट काम फिर करना है, पवित्रता, फिर शांति आएगी, फिर सुख, हमें सुख मिलेगा, आनंद आएगा। तो इसी प्रकार से हमें इस पर विचार करना चाहिए कि जो हमारे जो नेचर ऑफ सोल है उसके बारे में अपन विचार करना, जैसे हमारी बॉडी की नेचर है, इसको गर्मी, सर्दी, भूख लगती, इसी प्रकार से सोल की भी अपनी है, सोल को पवित्रता चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारी बीमारियां हैं, जैसे हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, मलेरिया हो गया, बुखार हो गया, तो इसी प्रकार से हमारी बीमारियां भी हैं। वो बीमारियां कौन सी हैं? आलस्य, अलबेलापन, माया, संग दोष, व्यर्थ संकल्प, इन पर विचार करो कि ये सारी बीमारियां हैं। ये किसकी बीमारियां? ये आत्मा की बीमारियां हैं। जैसे आत्मा के तीन अंग हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन और बुद्धि के बारे में तो देखो, कल भी बहुत बढ़िया गीता दीदी जी ने कितना अच्छा बताया था कि मन और बुद्धि एक लाइन में होंगे तभी हमारा कंसंट्रेशन बनेगा। अगर एक लाइन में नहीं है तो वी कांट मेक कंसंट्रेशन। तो इसलिए जो हमें सिखाया जाता है हम उसको कितना प्रैक्टिकल रूप देते हैं, असली बात तो यह है। सोम में भी और अपने परिवार में भी और आस पड़ोस में अगर हम प्रचार प्रसार करेंगे, क्यों, बहुत सी जनता को तो पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, आत्मा क्या है, बस शरीर को ही आत्मा और शरीर को ही जो नहीं सब कुछ लगाए बैठे हैं, जबकि ये अलग अलग हैं दोनों मिलकर के। जैसे घोड़ा हो गया, लगाम होगी, लगाम किसके? बुद्धि के हाथ में है। तो ये थोड़ा बहुत हम प्रचार प्रसार करेंगे तभी इसका जो है नहीं लोगों को कुछ नसीहत मिलेगी और वो अपना भविष्य उज्ज्वल बना सकते होंगे। ओम शांति।
ओम शांति। इस क्लास में जो है हमें एक्चुअली अभी तक हमें कल जो पढ़ा था उसमें यह था कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। आज इस क्लास में जो दीदी ने हमें पढ़ाया है गीता भैरव ने, उसमें कि मैंने क्या करना है और उसके बाद हमने क्या बनना है। तो क्या करने के विषय पे विशेष तौर से हमें उसी बातों को ज्यादा यहां डिस्कस करना चाहिए। और हमने जो डिस्कस किया, हमारा मेन जो मेन मुख्य जो है वो है मनसा, वाचा और कर्मणा। जब तक हम तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं, जो तीनों पहलू हैं, उन पर ध्यान नहीं देंगे तो हम कर्म में सफल नहीं हो पाएंगे जो हमें श्रेष्ठ कर्म करना है। मनसा में ये जरूरी है कि हम अपनी स्वमान और स्थिति को ध्यान में रखें। मनसा मन से बना है और मन का काम है संकल्प पैदा करना, विचार करना। जब तक वो हमारे समर्थ, शक्तिशाली और सकारात्मक नहीं होंगे तो हमारा कर्म श्रेष्ठ नहीं बन सकता। दूसरी बात है बुद्धि का। जब तक मन और बुद्धि का समन्वय नहीं होगा, उनमें आपस में तालमेल नहीं रहेगा तो हमारा कर्म श्रेष्ठ नहीं हो सकता। दूसरी बात है बोल चाल की, बोली की। जब तक हम कम नहीं बोलना सीखेंगे, यथार्थ मीठा नहीं बोलेंगे, मधुर नहीं बोलेंगे, तो हम एक तरह से निमित्त नहीं अपने आप को शो कर पाएंगे दूसरी आत्माओं के प्रति। जब हमारा आचरण एक मीठा बोलने का, कम बोलने का और यथार्थ बोलने का हो जाएगा तो सबको ये पता लगेगा कि ये ब्राह्मण बच्चे हैं। तीसरी बात है हमारे कर्मों में। जब तक हमारे कर्म में जो माया के विकार हैं वो दिखाई देते हैं तो हम ब्राह्मण नहीं लगेंगे। जैसे विशेष तौर से काम, क्रोध। जब भी हम क्रोध से किसी को कोई जवाब देंगे, और कर्म में हमेशा ये हो कि हम जो भी कर्म करें उसमें जब तक सद्भावना और शुभभावना नहीं दिखाई देगी तो हम ब्राह्मण बच्चे नहीं हैं। हमें हमेशा यह ध्यान रखना हो कि हमारा कोई भी कर्म हो वो सद्भावना से और सब शुभकामना के उसमें लिप्त हो। तो इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति।
माताओं को एक चांस है। माताओं की संख्या ज्यादा है पर एक ही माता आई। पीछे से आओ, पीछे से कौन आएगा? बहनें, माताएं, कुमारियां कोई नहीं है पीछे? आओ।
ओम शांति। आज से अब दीदी जी क्लास सुनी, बहुत अच्छा लगा। इसमें तीन चार बातें जो बिल्कुल अच्छी लगी कि फर्स्ट तो ये कि जो करेगा, बहुत अच्छा लगा कि जो करेगा सो पाएगा। और दूसरा ये अच्छा लगा कि हर युग में तो एक का एक, लेकिन संगम पर सो गुना। और तीसरा पॉइंट ये अच्छा लगा कि इस समय ही संसार की नजर हम बच्चों के ऊपर है, इसलिए हमारा जो कर्म है वो एकदम श्रेष्ठ और एकदम अच्छा होना चाहिए। और चौथा पॉइंट ये मना पता लगा कि जो बाबा ने हमें खजाने दिए हैं वो हमने अभी यूज करने हैं, ना संभाल के जो रखे हैं संभाल के नहीं, अब तो प्रैक्टिकल यूज करने हैं, तब जाके वो खजाने बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ओम शांति।
बहुत अच्छे ज्ञान हम सब बच्चों को बाबा ने भरपूर दिया है, पर जितना हम स्वदर्शन करते हैं, स्वचिंतन करते हैं, तो उतना पता चलता है कि हम अभ्यास में कहाँ तक लाए हैं। स्व पर ध्यान रखना ही आध्यात्मिक बनना है। आध्यात्मिक पुरुषार्थ का पहला पाठ है स्वयं पर अटेंशन देना। बाबा कहते ना, आप अच्छा करेंगे तो आपको देख के और अपने आप करेंगे। औरों की चिंता की बात नहीं है, लेकिन खुद पर अटेंशन देना है। और हमारे सामने परफेक्ट उदाहरण है, संपूर्ण बाप दादा हमारे सामने है। भले इन आंखों से हमने नहीं देखा, पर ज्ञान नेत्र से हमें बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारा बाबा कैसा है ना? तो उसके कंपैरिजन में है ना, जब दूसरों को देखते हैं तो कई सोचते हैं कि इससे तो हम अच्छे, इससे तो हम अच्छे है ना? कमजोर से कंपैरिजन करते हैं, फिर सोचते हैं कि इससे तो हम अच्छे हैं। पर हमेशा बाबा कहते हैं कि अपनी तुलना हमेशा अपने से जो आगे हैं उनसे करनी है ना? तो बाबा मम्मा दादियां हमारे सामने तो बहुत रोल मॉडल है, बहुत आदर्श है। दुनिया में तो कोई आदर्श नहीं है, है ना? इंसान किसको देख कर चले? न माता पिता को देख के चल सकते, न टीचर को, न नेताओं को, है ना? क्योंकि कलयुग अंत का समय है। हम आपस में नंबरवार पुरुषार्थी है, पर हम सबके आगे नंबर वन आत्मा भी है ना? तो बाबा कहते हैं ना, उनसे कंपैरिजन कर, कि मेरी जगह बाबा होते तो क्या करते। बाबा के सामने ऐसा परिस्थिति आती तो बाबा क्या करते। बाबा के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता तो बाबा क्या करते। जितना बाबा के जीवन चरित्र को अच्छी रीति जानते हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो स्वदर्शन और स्व का जितना स्पष्ट चित्र खुद की बुद्धि में होगा तो हम निर्णय कर सकते हैं कि बाबा जैसा बनना है तो और क्या पुरुषार्थ करना है ना? क्योंकि बाबा क्या चाहते हैं हम बच्चों से, कि बाप समान बने। हर माता पिता अपने बच्चों से क्या चाहते हैं, कि हमसे बढ़कर बने। हरेक अपनी रचना दी बेस्ट बनाना चाहते हैं। कोई चित्र बनाते, कोई शिल्प बनाते, कोई आइटम बनाते, कोई प्रोग्राम देते, हर कोई चाहता कि मेरी रचना अच्छे से अच्छी। तो बाबा भी हम बच्चों से चाहते हैं ना, कि मेरे बच्चे मेरे से भी बढ़कर, तो बाबा से कंपेयर करना है और बाबा को ही फॉलो करना है। तो पांच अभ्यास हम करेंगे। रोज की दिनचर्या में बार बार ज्ञान के सार रूप ये पांच अभ्यास फिर बार बार करें तो अपने आप हम अटेंटिव रहते हैं, हमारा रोज सफल। बहुत सिंपल बात बाबा ने हमें सिखाई है कि अगर पूरा ड्रामा सफल करना है तो संगम युग सफल कर, है ना? क्योंकि संगम की ही प्रारब्ध सतयुग और त्रेता युग है। संगम में जो कुछ हम करेंगे उसी का प्रारब्ध सतयुग और त्रेता युग है और उसी की यादगार द्वापर और कलयुग। जो कुछ प्रैक्टिकल करना है वो संगम युग में करना है, इसी के आधार पर पूरा ड्रामा चलता है। दो युग भक्ति में यादगार बनेंगे, रस में बनेंगे और दो युग प्रारब्ध। इसलिए पूरा ड्रामा मुझे बेस्ट बनाना है तो संगम युगी ब्राह्मण जीवन बेस्ट बना, क्वालिटी ब्राह्मण जीवन बना। ऐसे ही नहीं, ढीला ढाला नहीं, रूटीन नहीं, सामान्य नहीं, ब्राह्मण जीवन सफल करना। और ब्राह्मण जीवन सफल करना है तो सिंपल बात, रोज की दिनचर्या सफल करना। रोज सफल, जीवन सफल, जीवन संगम युगी सफल, पूरा ड्रामा सफल। सिर्फ रोज को सफल कर, इसलिए रोज की दिनचर्या में बार बार ये अभ्यास करें। बाबा कहते हैं ना, जब कभी जहां भी एक मिनट दो मिनट तीन मिनट मिलता है मन ही मन वो अभ्यास कर लो, रिवाइज कर लो, याद करा दो। और रोज सफल करने में भी सिंपल बात कि जिसका कहते हैं ना सुबह सफल दिन सफल, अमृत वेला 4 बजे से 8 बजे तक का समय जितना सफल, सारा दिन अपने आप अंतर्मुखी बनेंगे, स्मृति स्वरूप रहेंगे। उस समय जो फीलिंग आता है तो फिर स्वमान, फिर बाबा के साथी हैं और हीरो एक्टर हैं, नहीं भविष्य प्रारब्ध देवताई प्रारब्ध है तो वर्तमान का ही तो भविष्य होता है। चलो और 5 अभ्यास नया नया रोज करते रहे। अच्छा, जो नीचे बैठ सकते हो नीचे बैठे और बाकी जो सोफा कुर्सी पर बैठे हैं वो जितना घूम सके उतना ही घूमना। अब बैठे बैठे घूमेंगे, अलग अलग बैठ जाओ। शरीर से घूमेंगे जैसे मैं कहूं पर स्थिति में अचल रहे, नीचे नहीं आए, अपनी रूहानी स्वस्थिति में स्थित रहे। शरीर जैसे कि पुतले की तरह घूमेगा, पर मैं अंदर स्वस्थिति में अचल अडूल। पहला अभ्यास, स्व में मस्त हो जाए, रूहानी मस्ती, मौलाई मस्ती, अपने शुद्ध सत्य अलौकिक आत्मस्वरूप में मस्त। मुझे स्वयं में ही आनंद है, निजानंद स्वरूपम मैं आत्मा हूँ, आत्मा निज प्रकाश स्वरूपम मैं आत्मा हूँ, आत्मा स्वरूपानंद आत्मानंद सच्चिदानंद मैं आत्मा हूँ, आत्मा। देह से न्यारी चैतन्य प्यारी मैं एक ज्योति हूँ, शक्ति। राइट साइड घूम जाए धीरे से, डिटैच होकर। दूसरा अभ्यास, बाबा में मगन रहना, एक बाबा दूसरा न कोई, मैं बाबा की, बाबा मेरा, मेरे सर्व संबंध बाबा से, मेरी सर्व प्राप्तियां बाबा से। बाबा मिला, सब कुछ मिला, न तन से भटकना न मन से भटकना, बाबा मेरा सर्वस्व, बाबा बाबा बाबा, एक ही धुन एक ही लगन। लेफ्ट साइड घूम जाए बाबा के सामने, बाबा के सामने। तीसरा अभ्यास, अपने पार्ट में ट्रस्टी, बाबा मालिक है, हम उनके तरफ से निमित्त, लौकिक अलौकिक पारलौकिक जो भी पार्ट है श्रीमत अनुसार बजाना है। मालिक की आज्ञा श्रीमत अनुसार बजाना है। तो मैं लाइट हल्की सहज इसी दूसरों के पार्ट को साक्षी होकर देखना। शुभ भावना से सहयोग देना। साक्षी दृष्टा सर्व के लिए शुभ भावना शुभ काम। ड्रामा में होते मुक्त जीवन में होते जीवन मुक्त। लेफ्ट साइड गुंज डिटैच होकर घूमे। चौथा अभ्यास इस दुनिया में रहते हुए सदा वतन वासी रहना। शरीर से यहां मन बुद्धि से ऊपर या बिंदु बन बिंदु बाबा के पास मूल वतन में रहे या फरिश्ता बन अव्यक्त बाप के संग सूक्ष्म वतन में रहे। सदा मन की आंख से वतन को देखें। वतन वासी अब वापस घर जाना है। फिर नई दुनिया में आना है। बाबा के सामने हो जाए। पांचवा अभ्यास मास्टर दाता बनना। बाबा ने हमें सब कुछ दिया है। हमें भरपूर किया है। बाकी बच्चे ब्राह्मण जीवन में मास्टर दाता बने। जो अलौकिक संपदा बाबा ने दी है वो सबको बांटना है। शांति दाता के बच्चे शांति दूत बन, शांति के वाइब्रेशंस फैलाएं, सुखदाता के बच्चे, सुखदेव बनकर सबको सुखी बना, प्यार के सागर की, प्रेम गंगा बन, रूहानी प्यार से चलना है, सर्वशक्तिमान की, शिव शक्ति बन, सब में हिम्मत भरनी, ज्ञान सागर की, ज्ञान नदी बन, ज्ञान दान करना है। बाबा ने जो कुछ दिया है बांटना।
आदरणीय गीता दीदी का इन दोनों ही सत्रों के लिए बहुत बहुत तहे दिल से थैंक्स करती हैं, शुक्रिया। और बहुत सुंदर दोनों ही बार अभ्यास किया है, और ये जरूर दोनों ही अभ्यास को हम बार बार बीच में दोहराती रहेंगी। ओम शांति।